एक पल के लिए ये दृश्य दिमाग में लाते हैं। एक विशाल ऊंची पत्थर की दीवार है और बाहर नजर दौड़ाते ही जहां तक आंखें देख सकती हैं, दुनिया की सबसे खूंखार और अजय सेना का पड़ाव नजर आता है।
बहुत ही डरावना नजारा रहा होगा।
बिल्कुल, धुएं का गुबार आसमान को छू रहा है, क्योंकि मतलब उन्होंने अभी अभी देश के 46 शहरों को जलाकर राख कर दिया है और अब वो दीवार के ठीक बाहर खड़े हैं। लेकिन उनके सेनापति ने अपनी म्यान से तलवार नहीं निकाली है।
हाँ, उसने कोई हथियार नहीं उठाया।
इसके बजाय वो आगे बढ़ता है और उसी भाषा में चिल्लाना शुरू करता है जिससे दीवार पर खड़े सैनिक बोलते हैं। उसका लक्ष्य शहर की दीवारें तोड़ना नहीं है, बल्कि उन सैनिकों का दिमाग तोड़ना है। वो उन्हें बता रहा है कि उनका राजा एक झूठा इंसान है और उनके ईश्वर ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है।
ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था।
बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा विषय है डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड द्वारा यशाया 36 और 37 पर किया गया अध्ययन। हम 701 ईसा पूर्व में यरूशलम पर अशूर यानी असीरिया की घेराबंदी और राजा हिजकिया के उस भयानक संकट को समझने जा रहे हैं। ये किसी प्राचीन ऐतिहासिक घटना से ज्यादा आज के किसी आधुनिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा महसूस होता है।
हाँ, और इस घटना की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उसी जगह जहाँ ये सब शुरू हुआ था। ये घेराबंदी कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं थी।
तो ये कैसे शुरू हुआ?
डॉक्टर ओसवाल्ड हमें याद दिलाते हैं कि यरूशलेम के बाहर जिस स्थान पर अश्शूरी सेना का कमांडर खड़ा होकर धमकियां दे रहा था, ये ठीक वही जगह थी जहां 35 साल पहले हिजकिया के पिता राजा आहाज ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था।
ओह, 35 साल पहले?
हाँ, उस समय आहाज को अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा था और ईश्वर के नबी ने उन्हें सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखने को कहा था। लेकिन आहाज ने क्या किया, उन्होंने एक सुपर पावर यानी उसी अश्शूर साम्राज्य से मदद मांग ली।
अरे बाप रे।
हाँ, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अश्शूरियों के साथ एक राजनीतिक और आर्थिक समझौता कर लिया।
मतलब जिस शैतान से समझौता करके आहाज ने खुद को बचाया था, 35 साल बाद वही शैतान ब्याज वसूलने उनके दरवाजे पे खड़ा है। ये तो पीढ़ियों तक चलने वाला एक शराब जैसा है।
सही कहा।
आज ने सोचा होगा कि वो बहुत चतुरकूट नीति कर रहा है, पर असल में उसने अपने ही बेटे के लिए तबाही का रास्ता खोल दिया।
बिल्कुल, और वो तबाही अब उनके दरवाजे पर आ चुकी थी। लेकिन यहाँ एक भू राजनीतिक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। अश्शूर साम्राज्य, जो उस समय का निर्विवाद विश्व विजेता था, उसका असली लक्ष्य यहूदा राज्य या यरूशलेम था ही नहीं।
सच में? तुम्हें वहां क्या कर रहे थे?
वे तो दुनिया की दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य मतलब मिस्र पर कब्जा करना चाहते थे। यहूदा उनके रास्ते में पड़ने वाला बस एक छोटा सा स्पीड बम्प था।
बस एक स्पीड बम्प?
हाँ, लेकिन वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर अश्शूरी सेना मिस्र की तरफ आगे बढ़ जाती तो पीछे से यहूदा की सेना उनकी सप्लाई लाइन को काट सकती थी। इसलिए रणनीतिक तौर पर यहूदा को कुचलना उनके लिए जरूरी हो गया था।
इसी रणनीति के तहत अश्शूर ने यहूदा के 46 किलों को एक एक करके फतह कर लिया था।
40 किले, और अब वे लाकीश की घेराबंदी कर रहे थे।
मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है। लाकीश यरूशलेम से भी बड़ा और मजबूत शहर था, है ना?
हाँ, लाकीश एक बहुत ही प्रमुख सैन्यगढ़ था।
तो अगर लाकीश गिर सकता है तो यरूशलेम की क्या बिसात, तबाही बिल्कुल सिर पर थी। पर यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर अश्शूर इतने ही ताकतवर थे तो उन्होंने सीधे यरूशलेम पर हमला क्यों नहीं किया? वे दीवार के बाहर खड़े होकर भाषणबाजी क्यों कर रहे थे?
इसका जवाब अर्थशास्त्र में छिपा है। प्राचीन काल में घेराबंदी, जिसे सीज कहते हैं, वो बहुत महंगा और थका देने वाला काम होता था।
अच्छा, सेना के खर्च के कारण?
बिल्कुल, सेना को महीनों या कभी कभी सालों तक एक ही शहर के बाहर डेरा डालना पड़ता था। सोचिए, 2 लाख सैनिकों को एक पराई जमीन पर रोजाना खाना खिलाना, उनके पीने के पानी का इंतजाम करना, बीमारियों से बचाना, ये सब साम्राज्य के खजाने को खाली कर देता था।
हाँ, लॉजिस्टिक्स का तो बुरा हाल हो जाता होगा।
एकदम सही। इसलिए अश्शूरी राजा सन्हेरीब ने लाकीश से अपनी पूरी सेना भेजने के बजाय अपने फील्ड कमांडर को यरूशलेम भेजा। इस कमांडर को रपशके कहा जाता था।
तो रपशके को एक छोटी टुकड़ी के साथ भेजा गया।
हाँ, राजा का मकसद एक सस्ता समर्पण हासिल करना था, मतलब वो चाहता था कि बिना एक भी तीर चलाए, बिना अपने सैनिकों को खोए, यरूशलेम के लोग डर के मारे खुद ही दरवाजे खोल दें।
अरे ये तो बिल्कुल किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के हॉस्टाइल टेकओवर जैसा है।
हाँ बिल्कुल वैसी ही रणनीति।
लड़ने वकीलों पर करोड़ों खर्च करने के बजाय वे सीधे उस छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स या बोर्ड सदस्यों के पास जाते हैं
और उन्हें डराते हैं।
हाँ, वे कहते हैं तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है, तुम्हारे सीईओ को कुछ नहीं पता, अगर तुमने आज हमारे कागज पर साइन नहीं किए तो कल तुम सड़क पर आ जाओगे। वे उनके आत्मविश्वास को इस हद तक कुचल देते हैं कि छोटी कंपनी बिना लड़े ही चाबियां सौंप देती हैं।
ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और इस टेकओवर के लिए रब्शुके ने अपना हथियार बहुत सोच समझ कर चुना था। वो हथियार था सामने वाले के विश्वास की धज्जियां उड़ाना,
विश्वास को तोड़ना।
हाँ, डॉक्टर ऑसवर्ल्ड बताते हैं कि रब्शुके के भाषण में विश्वास या ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल 9 बार हुआ है। उसका पूरा भाषण एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है कि कैसे किसी के अस्तित्व के आधार को एक एक करके तोड़ा जाए। रब्शुके ने यरूशलम के लोगों की हर उस उम्मीद को निशाना बनाया जिस पर वो टिके हुए थे।
तो उन उम्मीदों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली उम्मीद तो उनका कूटनीतिक गठबंधन था मिस्र। यहूदा के लोगों को लग रहा होगा कि मिस्र की सेना उन्हें बचाने आ रही है।
बिल्कुल, मिस्र उस वक्त एक बड़ी ताकत था।
लेकिन रब्शुके मिस्र की तुलना एक टूटी हुई सरकंडे की लाठी से करता है। मतलब ये कोई साधारण रूपक नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि लाठी कमजोर है।
हाँ, उसका मतलब बहुत गहरा था।
वो कह रहा है कि अगर आप एक टूटी हुई नुकीली लकड़ी पर अपना पूरा वजन डालेंगे तो वो न सिर्फ टूट जाएगी बल्कि वो लकड़ी आपके हाथ के आर पार हो जाएगी। मतलब मिस्र मदद तो नहीं करेगा, उल्टा वो मौत का कारण बनेगा।
सही कहा। रब्शुके उन्हें ये एहसास दिला रहा था कि उनका राजनीतिक सहारा अंदर से बिल्कुल खोखला है और जब वो कूटनीतिक मोर्चे पर उन्हें तोड़ देता है तो वो उनकी सैन्य शक्ति पर वॉर करता है।
सैन्य शक्ति पर कैसे?
वो कहता है कि अगर तुम अपनी सैन्य रणनीति पर भरोसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। अश्शूर तुम्हें 2000 घोड़े मुफ्त में दे देगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास उन पर बैठने के लिए 2000 सैनिक भी बचे हैं?
ये तो एक बहुत गहरा अपमान था।
हाँ, पूरी तरह से बेइज्जती।
ये वैसे ही है जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर आपके सामने बैठकर कहे, मैं अपने हाथी और वजीर दोनों बोर्ड से हटा देता हूँ फिर भी मैं तुम्हें 10 चालों में हरा दूंगा। ये सामने वाले की मानसिकता को पूरी तरह जमीन में मिला देना है।
बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच रब्शुके का जो अगला वार था वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था।
अच्छा, वो क्या था?
वो उनका धार्मिक और सांस्कृतिक आधार हिलाने की कोशिश करता है। रब्शुके कहता है कि याहवे जो उनका ईश्वर है वो खुद यरूशलम से नाराज है और कारण ये बताता है कि हिजकिया ने याहवे के सभी स्थानीय पूजा स्थलों को तोड़ दिया है।
एक सेकेंड, जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा तो मुझे लगा अश्शूरी खुफिया जानकारी तो बहुत अच्छी है पर वे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब हिजकिया ने तो ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही उन पूजा स्थलों को तोड़ा था, है ना?
सतह पर देखने से ये रब्शुके की अज्ञानता लग सकती है लेकिन गहराई में ये बहुत ही खतरनाक चाल थी।
कैसे?
यह सच है कि हिजकिया ने यहूदा राज्य में एक बहुत बड़ा धार्मिक सुधार किया था। ईश्वरीय नियम के अनुसार पूजा सिर्फ एक ही जगह यानी यरूशलेम के मुख्य मंदिर में केंद्रित होनी चाहिए थी।
हाँ, जो कि सही कदम था।
लेकिन सालों से आम लोगों ने अपने गांव और कस्बों की पहाड़ियों पर अपने छोटे छोटे स्थानीय पूजा स्थल जिन्हें हाई प्लेसेस कहा जाता था बना लिए थे। हिजकिया ने नियम का पालन करते हुए उन सभी स्थानीय स्थलों को नष्ट करवा दिया था।
ओहो, अब मैं समझ रहा हूँ।
हाँ, अब जरा दीवार पर खड़े उस आम सैनिक या नागरिक की नजर से सोचिए। वो शायद गांव से आया है। जब राजा ने उसके पुश्तैनी पूजा स्थल को तोड़ा होगा तो वो अंदर से बहुत नाराज हुआ होगा।
बिल्कुल, उसे लगा होगा कि राजा ने उसके धर्म का अपमान किया है।
बस रब्शुके इसी आंतरिक कलह और राजनैतिक घाव को कुरेद रहा था। वो यरूशलेम के लोगों से कह रहा था, तुम्हारे राजा ने तुम्हारे ही भगवान के मंदिरों को तोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा भगवान नाराज होकर हमें तुम्हें सजा देने के लिए लाया है।
ये तो आधी सच्चाई और गलत जानकारी का बहुत ही सटीक इस्तेमाल था।
ये बहुत ही भयानक स्तर का माइंड गेम है।
वो राजा और उसकी जनता के बीच सीधे दरार पैदा कर रहा है।
हाँ, वो उन्हें अंदर से तोड़ना चाहता था।
वो कह रहा है कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बाहर अश्शूर नहीं बल्कि अंदर बैठा तुम्हारा अपना राजा हिजकिया है।
और यही कारण है कि भाषा का चुनाव इतना अहम हो जाता है।
बिल्कुल, भाषा का चुनाव यहाँ बहुत क्रिटिकल था। जब यहूदा के अधिकारियों ने रपशेके से कहा कि वो कूटनीतिक भाषा यानी आरामी में बात करे ताकि दीवार पर खड़े आम लोग ना समझ सकें, तो रपशेके ने क्या किया? उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में हिब्रू में बोलना शुरू कर दिया, जो आम जनता की भाषा थी।
हाँ, वो सीधा जनता तक पहुंचना चाहता था।
वो बोर्ड रूम के दरवाजे लांघकर सीधा फैक्ट्री के कर्मचारियों से बात कर रहा था, है ना?
बिल्कुल। और उसने हिब्रू में जो बातें कही, उनका मकसद सीधे तौर पर खौफ पैदा करना था। उसने कोई मीठी या राजनीतिक भाषा इस्तेमाल नहीं की। उसने घेराबंदी की नंगी और खौफनाक सच्चाई को लोगों के सामने रख दिया।
बहुत ही डरावनी सच्चाई।
उसने चिल्लाकर कहा कि अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हें भूख से तड़पकर अपना खुद का मल खाना पड़ेगा और अपना ही पेशाब पीना पड़ेगा।
ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और घेराबंदी के दौरान सच में ऐसा ही होता था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वो हर उस सैनिक की रूह कंपा रहा था जो उस वक्त दीवार पर खड़ा सुन रहा था।
सच में।
इसके साथ ही रपशेके ने एक और बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने अपने पूरे भाषण में हिस्किया को एक बार भी राजा कहकर संबोधित नहीं किया। वो बार बार सिर्फ हिस्किया कहता है।
ओहो, हिस्किया को तुम्हें धोखा मत देने दो, ऐसा कुछ है ना?
हाँ, ऐसा करके वो राजा के पद, उसकी सत्ता और उसके सम्मान को सीधे खारिज कर रहा था। अंत में उसने अपनी बात को इस तरह समेटा, क्या किसी भी देश के भगवान ने उन्हें अशूर की ताकत से बचाया है? नहीं, तो तुम्हारा यावे तुम्हें कैसे बचाएगा? उसने इस युद्ध को दो देशों का नहीं बल्कि अशूर बनाम यावे का रूप दे दिया था।
अगर मैं खुद को हिस्किया की जगह रखकर देखूं, तो ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब आपकी कूटनीति नाकाम हो चुकी है, सेना खत्म है, आपका दुश्मन आपके ही लोगों के दिमाग में आपके खिलाफ जहर घोल रहा है और अब वो आपके ईश्वर को सरेआम चुनौती दे रहा है।
हाँ, ये एक इंसान के टूटने का चरम बिंदु है।
कोई भी साधारण लीडर इस बिंदु पर आकर टूट जाएगा। या तो वह आत्मसमर्पण कर देगा या फिर गुस्से में कोई मूर्खतापूर्ण सैन्य कदम उठा लेगा। लेकिन हिजकिया का जो कदम था वो इंसान की सामान्य प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत था।
बिल्कुल, हिजकिया की प्रतिक्रिया हमें ये सिखाती है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो सच्चा विश्वास कैसे काम करता है। जब हिजकिया को रपशेके के इस भाषण के बारे में पता चलता है तो वो न तो सेना को इकट्ठा करता है और न ही आत्मसमर्पण का झंडा फहराता है।
तो वो क्या करता है?
वो अपने राजसी कपड़े फाड़ देता है। ओह, शोक के खुरदरे वस्त्र पहनता है जिसे सैक क्लॉथ कहते हैं और सीधा मंदिर चला जाता है। वो अपनी स्थिति को छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता। वो ये झूठा दिखावा नहीं करता कि सब ठीक हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। वो अपनी पूरी असहायता को स्वीकार करता है।
हाँ, श्रोतों में हिजकिया के उस संवाद का जिक्र है जहां वो अपनी स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही दर्दनाक रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, बच्चे जन्म लेने के कगार पर हैं, पर उन्हें पैदा करने की ताकत नहीं है।
ये बहुत ही शक्तिशाली रूपक है।
ये रूपक आज के दौर में शायद उतना असर ना करे, लेकिन प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, ये एक खौफनाक वास्तविकता थी। कई बार घंटों के भयंकर प्रसव दर्द के बाद जब जन्म का समय आता था तो माँ के शरीर में इतनी ताकत नहीं बचती थी कि वो बच्चे को जन्म दे सके।
हाँ, और इसका परिणाम बहुत दुखद होता था,
दोनों की मौत। हिजकिया कह रहा है कि हमारा देश उसी मुहाने पर खड़ा है, दर्द अपने चरम पर है, लेकिन हमारे अंदर खुद को बचाने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है, हम खत्म होने वाले हैं।
ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्वीकारोक्ति है, और यहीं पे डॉक्टर ऑसवाल्ड हमें बेजान मूर्तियों और एक जीवित ईश्वर के बीच का असली फर्क समझाते हैं।
ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है।
राबिश के सोच रहा था कि यावे भी उन लकड़ी और पत्थर के मूर्तियों जैसा है जिन्हें अशूर ने दूसरे देशों में जलाकर राख कर दिया था। डॉक्टर ऑसवाल्ड एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि इंसान मूर्तियां क्यों बनाता है? इंसान मूर्तियां इसलिए बनाता है ताकि वो ईश्वर को अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रित कर सके। एक मूर्ति ना तो आपसे सवाल पूछती है ना ही वो आपके नियंत्रण से बाहर जाती है।
अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
लेकिन हिजकिया जिस ईश्वर के पास गया वो कोई मूर्ति नहीं था, वो जीवित ईश्वर था जो सुनता है, जो देखता है और जो इतिहास के पन्नों में हस्तक्षेप कर सकता है। जब अश्शूरी राजा एक धमकी भरा पत्र भेजता है तो हिजकिया उस पत्र को लेकर मंदिर जाता है और उसे भगवान के सामने खोलकर रख देता है।
और ये प्रार्थना इस पूरी घटना का सबसे अहम मोड़ है, मतलब अगर मैं वहां होता तो शायद मेरी प्रार्थना होती, हमें बचा लीजिए क्योंकि हम बेकसूर हैं या क्योंकि हमने आपके लिए इतने अच्छे मंदिर बनाए हैं।
ज्यादातर लोग यही करते।
लेकिन हिस्किया ऐसा कुछ नहीं कहता, वो प्रार्थना करता है, हमारी मदद इसलिए मत करो क्योंकि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करो ताकि दुनिया के सभी राज्य ये जान सकें कि तू ही अकेला ईश्वर है।
ये एक बहुत ही निस्वार्थ प्रार्थना थी।
बिल्कुल, संकट की उस चरम सीमा पर भी वो खुद के अस्तित्व से ज्यादा ईश्वर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की बात कर रहा है। वो खुद को उस बड़ी योजना के सामने पूरी तरह समर्पित कर देता है।
हाँ, और ये समर्पण ही उस अहंकार के ठीक विपरीत था जो अश्शूरी राजा दिखा रहा था। हिस्किया समझ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके शहर को बचाने की नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि क्या घमंड, क्रूरता और झूठ की आवाज सच्चाई पर हावी हो सकती है या नहीं।
और इसका जवाब भी उन्हें मिला।
बिल्कुल मिला, और हिस्किया के इस निष्काम समर्पण का जो जवाब मिला वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही नाटकीय था। भविष्यद्वक्ता यशाया ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं, वो संदेश अश्शूर की धमकियों का एक करारा जवाब था।
यशाया क्या कहते हैं?
यशाया कहते हैं कि सियोन की कुंवारी बेटी उस खूंखार अश्शूरी राजा को देखकर डरती नहीं है, बल्कि वह उस पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है और उसके पीछे अपना सिर हिलाती है।
जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे खूंखार और ताकतवर राजा, जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे, और एक असहाय लड़की उस पर हंस रही है। ये दृश्य ही अश्शूर के उस खोखले अहंकार को चकनाचूर कर देता है।
बिल्कुल, अश्शूरियों को लगता था कि वे अपनी सैन्य शक्ति और अपनी क्रूर बुद्धि के बल पर दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं, लेकिन यशाया के जरिए ईश्वर उन्हें बताते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब तुम कर रहे हो? तुम तो बस मेरी उस पुरानी योजना का एक छोटा सा औजार हो।
मतलब वे कठपुतलियां थे।
यहाँ हम इतिहास में इंसान की आजाद इच्छा यानी फ्री विल और एक बड़ी ईश्वरीय योजना के बीच का संतुलन देखते हैं। अश्शूरियों ने अपनी क्रूरता, अपनी हत्याएं और अपना घमंड अपनी मर्जी से चुना था, वे कोई रोबोट नहीं थे।
हाँ, उन्होंने खुद वो खौफनाक रास्ते चुने।
बिल्कुल, लेकिन उनका वो घमंड भी अंततः एक बृहत्तर योजना का ही हिस्सा बन गया, और जब उनका घमंड उस सीमा को पार कर गया जहां उन्होंने ईश्वर को ही चुनौती दे दी, तो उनका पतन निश्चित हो गया।
और वो पतन इतना भयानक था कि उसने रातों रात इतिहास बदल दिया। मतलब स्रोतों के अनुसार उसी रात ईश्वर के दूत ने अश्शूरी शिविर में 185,000 सैनिकों को मार गिराया।
हाँ, एक ही रात में।
जो सेना पूरी दुनिया को डरा रही थी वो सुबह होने तक लाशों के ढेर में बदल चुकी थी। राजा सन्हेरेब को अपनी जान बचाकर बिना यरूशलेम पर कब्जा किए वापस अपने देश भागना पड़ा। ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है?
हाँ, और ये इस पूरे गहरे विश्लेषण का सबसे रोमांचक ऐतिहासिक पहलू है।
अच्छा,
आज भी हमारे पास राजा सन्हेरेब के ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें सन्हेरेब्स एनल्स या टेलर प्रिज्म कहा जाता है। और प्राचीन काल के राजा अपनी हर जीत को बहुत बड़ा चढ़ाकर दीवारों और पत्थरों पे लिखवाते थे। सन्हेरेब ने भी लिखवाया।
तो उसने क्या लिखा?
उसने बड़े गर्व से दर्ज किया कि उसने यहूदा के कितने शहर जीते, कितना खजाना लूटा, और फिर वो लिखता है कि उसने राजा हिजकिया को पिंजरे में बंद पक्षी की तरह यरूशलम में कैद कर लिया।
पिंजरे में बंद पक्षी, ये तो ऐसा है जैसे आज के दौर में कोई नेता चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी कहे कि हमने विपक्ष को उनके ही गढ़ में सीमित कर दिया है। मतलब अपनी करारी हार को एक पीआर स्टंट में बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, यही बात इतिहासकारों को चौंकाती है। जो राजा अपनी सबसे छोटी जीत का भी लंबा बखान करता था, वो इस बारे में बिल्कुल चुप क्यों है कि उसने यरूशलम पर कब्जा किया या नहीं?
सही बात है, अगर जीता होता तो डंके की चोट पर लिखता।
बिल्कुल, उसने हिजकिया का क्या किया इस बारे में दस्तावेज पूरी तरह मौन है। वो चुप इसलिए है क्योंकि वो जीत उसे कभी मिली ही नहीं। उसने अपनी 185,000 सैनिकों की मौत और अपनी भयानक हार को छुपाने के लिए ये पिंजरे में बंद पक्षी वाली कूटनीतिक भाषा घड़ी।
बहुत चालाक।
तथ्य ये है कि इस घेराबंदी के बाद सन्हेरेब कभी भी वापस पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध करने नहीं आया। मिस्र पर कब्जा करने का अश्शूर का जो सपना था वो यरूशलेम की दीवारों के बाहर ही दफन हो गया।
और सन्हेरेब का क्या हुआ?
उसका अंत देखिए, 19 साल बाद जब वो अपने देश में अपने देवता के मंदिर में पूजा कर रहा था, तब उसके खुद के बेटों ने उसकी हत्या कर दी।
अरे बाप रे।
जिस देवता पर उसे इतना घमंड था कि वो दुनिया के सभी देवताओं से शक्तिशाली है, वो उसे उसके अपने ही बेटों की तलवार से नहीं बचा सका।
ये तो बहुत ही गहरा और काव्यात्मक न्याय है। इतिहास के इन पन्नों से हमें जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि अहंकार हमेशा खुद को अजय समझता है, लेकिन असल में वो अंदर से सबसे ज्यादा खोखला होता है।
बिल्कुल।
और जब चारों तरफ अंधेरा हो और डर आपको पंगू बनाने की कोशिश कर रहा हो, तब विश्वास ही वो चीज है जो आपको टूटने से बचाती है। हम आज 701 ईसा पूर्व में नहीं जी रहे हैं। हमारे शहरों के बाहर अश्शूरी सेना घेराबंदी करके नहीं बैठी है।
हाँ, आज के खतरे अलग हैं।
बिल्कुल। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहानी आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज घेराबंदी हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी से होती है। हमारे पास 24 घंटे न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया है, और हर सेकंड हमारे फोन पर हजारों नोटिफिकेशन आते हैं।
सही कह रहे हैं।
आज भी आधी सच्चाई, गलत जानकारी और खौफ का लगातार इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके।
हम कह सकते हैं कि आज के दौर में रब्श के अलग अलग रूप लेकर आते हैं। ये वो आवाजें हैं जो लगातार हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, कि हमारे सिद्धांतों का कोई मोल नहीं है, और ये कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है।
बिल्कुल सही।
वे हमारी ही कमजोरियों और हमारे ही अंतर्विरोधों का फायदा उठाकर हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हिजकिया की कहानी हमें सिखाती है कि हम इन आवाजों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हमें अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके सच्चाई और एक बड़े उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करना है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और जैसे जैसे हमने इन ऐतिहासिक स्रोतों की परतें खोली, ओह, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां हमेशा मैदान में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में लड़ी जाती हैं।
एकदम सच।
हम इस गहरे विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर ये सच है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और डर हमारी कमजोरियों और आधी सच्चाइयों पर ही पलते हैं, तो जरा सोचकर देखिए, आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हमारे अपने दिमाग में ऐसी कौन सी अशूरी आवाजें हैं जिन्हें हम खुद अंदर आने दे रहे हैं।
ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। वे कौन सी आवाजें हैं जो लगातार ये विश्वास दिला रही हैं कि हम असहाय हैं और हमें हार मान लेनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, उन आवाजों को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए और अपने मानसिक यरूशलेम के दरवाजों को मजबूत करने के लिए आज हमें कौन से कदम उठाने की जरूरत है?
बहुत ही गहरा सवाल है।
तो इन विचारों के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। स्रोतों की गहराई से ज्ञान के इन मोतियों को निकालने का यह सफर आगे भी जारी रहेगा।